ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्ममोहो नृणामेश कल्प्यते देवमायया, सुहृद्दुर्हृद् उदासीना इति देहात्ममानिनाम्। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्, नानेव गृह्यते मूढैः, यथा ज्योतिर्यथा नभः। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राणगुणात्मकः, आत्मन्य विद्या क्लृप्तः, संसारयति देहिनाम्। नात्मनोन्येन संयोगो वियोगश्च सतः सति, तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्याम् यथा रवेः। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित्, कलानामिव नैवेन्दोर् मृत्तिर्यस्य कुहुरिव। यथाशयानयात्मानम् विषयान् फलमेव च, अनुभुङ्क्तेऽप्यस्यत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवान्। तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता, वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। आत्ममोहः, आत्मा के विषय में अज्ञान, मनोभ्रम, नृणाम मनुष्यों का, ऐसा या कल्प्यते संभव होता है, देव माया भगवान की माया से, सुहृद् हितैषी, दुर्हृद् शत्रु, उदासीना और उदासीन, इति इस प्रकार का विचार, देहात्ममानिनाम देह को मैं मानने वालों का, तो इसके पहले कथा में इस बात का निरूपण किया गया था, जब भगवान हाथ में खड़ग लेकर रुक्मी का वध करने चले, तब श्री रुक्मिणी जी घबरा गई, उनका मुख सूख के आंख सूख के मारे, सारे अंग कांपने लगे, कतरता से उनका श्रृंगार बिगड़ने लगा, फूल की माला और भी हार भी विस्वस्त होने लगे। उन्होंने अपने प्रियतम भगवान के चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि हमारे भाई को छोड़ दीजिए। परंतु भगवान ने रुक्मी का वध तो नहीं किया, परंतु उसे विरूप किया, उसके केस काटकर। इस बात से भी रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई थी। तो रुक्मी के प्रति जो सहज सद्भाव है रुक्मिणी जी का अपने भाई के प्रति, वह किस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इसको बलराम जी समझाना चाहते हैं। भगवान, इस प्रकार का विचार यह तुम्हारे बुद्धि का भ्रम है। तवेयम विषमा बुद्धि, तुम्हारी यह बुद्धि ठीक नहीं है इस तरह का विचार करना। इस पर रुक्मिणी जी मान लीजिए प्रश्न कर, यह कैसे, यदि मैं अपने भाई को सुहृद मानती हूं तो यह हमारी बुद्धि असमीचीना कैसे है, कैसे गलत। ऐसे वो बोल नहीं सकते हैं बलराम जी के सामने, लेकिन एक अर्थ को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी भागवत की टीका लिखे हैं तो इसी विधि से लिखे, प्रश्न उत्थापित करते जाते हैं। कैसे हम माने कि हमारा ये भ्रम है, क्या भाई के प्रति इतना स्नेह है दिखाना और उसका केस काटने पर रोना, यह अज्ञान है, प्रश्न हो सकता है ना। संसार में तो अन्य लोग इस बात को कहेंगे, वाह कितनी अच्छी बहन है, भाई इतना विरोध किया फिर भी बहन बहुत महान है। ठीक है, इस प्रकार का विचार करना, लेकिन केस काट दिए जाने पर इस तरह रोना, शोक में डूब जाना, यह उचित नहीं था। और वह अभी रुक्मी जैसे भाई के लिए इस बात को श्री बलराम जी यहां व्यक्त कर रहे हैं। यह केवल रुक्मिणी जी की बात नहीं है, वो तो भगवान की प्रिया है, उनमें क्या ज्ञान होगा। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में ये जो प्रसंग दिए गए हैं, खासकर जहां तत्व ज्ञान दिया जाता है, सब हम लोगों को दिया गया है। मानना चाहिए कि भगवान श्री बलराम जी हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल लीला करते हैं, युद्ध करते हैं, बाकी बोलते नहीं हैं। बीच बीच में वो ज्ञान देते जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने मित्र को समझा रहे हैं, तो वह समझाना समग्र मानव जाति के लिए सबसे बड़ा ज्ञान कोश हो गया। इसी प्रकार यहां भगवत प्रिया रुक्मिणी देवी को समझा रहे हैं भगवान बलराम जी, लेकिन उनका आशय है संसार को ज्ञान देना। तो समझा रहे हैं कि संसार में जो जीव की भावना हो रही है कि यह मेरा सुहृद है, यह हमारा अपना व्यक्ति है, और वह दुर्हृद है, वह पराया है, शत्रु है, अथवा वह तटस्थ है, न्यूट्रल है, इस प्रकार का विचार देह को मैं मानने वालों का होता है। इति देहात्म मानिना, देहात्म मानी का अर्थ है देह को ही आत्मा जो मानता है वह देहात्म मानी। इन शब्दों को समझना चाहिए। एक बार गांव में मैं बारंबार इस शब्द का प्रयोग कर रहा था, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि। कई बार गीता पर प्रवचन कर रहा था तो ऐसे इस शब्द को कह रहा है। तो एक व्यक्ति कथा प्रवचन सुनने के बाद कहा, तो महाराज यह ज्ञान केवल देहात में है, शहर में नहीं है। वो बेचारा इतना भी नहीं समझ रहा था। Ha 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 ha. क्या शहर में ऐसे अज्ञानी लोग नहीं है? आप कह रहे हैं देहात में बुद्धि है, देहात में तो जो फिलोसफिकल शब्द हैं, टर्म है शास्त्रों में, बहुत बड़ी बात को छोटे से कोड में कह देते हैं। देहात्म बुद्धि, देह में आत्मभाव, मैं यह देह हूं, देह से मैं पृथक हूं और देह के धर्मों से बिल्कुल मैं अलग हूं, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को इस संसार में है। देह जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। भगवान गीता में यही से प्रारंभ करते हैं ज्ञान, न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा नित्य है, नित्य काल से बहुत पहले से ही है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। शरीर पहले नहीं था और नहीं रहेगा बाद में। शरीर सब समय नहीं था, यह तो देखा जाता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो कितना छोटा छोटा होते हैं, और यह भी पता चलता है कि कब से उनका शरीर बनना गर्भ में प्रारंभ हो रहा है। डॉक्टरों को तो विशेष रूप से पता होगा कितना छोटा शरीर बनना चालू होता है धीरे धीरे, कितने महीने लग जाते हैं। परंतु आत्मा इस तरह से बनता नहीं है, वह है। न जायते शरीरम तो जायते, शरीर तो जन्म लेता है परंतु आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो पहले से ही रहता है। ठीक है, न जायते परंतु मृियते किम, क्या मरता है? भगवान कहते न, न जायते न मृियते, कदाचित कभी भी ये जन्म नहीं लिया है और न कभी मर सकता है। और शरीर निश्चित जन्म लिया है, मरना निश्चित। जब तक से ही ध्रुवम जन्म ध्रुवम जन्म में तस्त, शरीर तो जाएगा ही। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, नायम भूत्वा यह कभी हुआ नहीं है। मनुष्य सोचेगा कि आखिर कभी तो आत्मा का जन्म हुआ होगा। भगवान कहते नहीं, ऐसा कभी भी समय नहीं था जब ये हुआ, और न तो आगे होगा और न तो इसमें भूया हो रहा है। शरीर वर्तमान में भी हो रहा है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसके सेल्स कैसे कैसे नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, इसको भूया कहते हैं। हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, चल रहा है धीरे धीरे, कुछ इसमें विक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आत्मा इस तरह नहीं है। न तो कभी जन्म लिया है, न हुआ है, न आगे ऐसा होगा कि होगा, और न तो इस समय कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है। भूया न भूतवा न भविता न भूया, फिर उसी को भगवान कह रहे अज नित्य शाश्वतोयम पुराण, यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। पुराण मतलब अनादि काल से है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता। यह प्रत्येक व्यक्ति के का अपना ज्ञान है। हम लोग बहुत बहुत बात जानते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका का नक्शा कोई देख करके धड़ाधड़ बतावे कि यह स्थान यहाँ है, ये है, वो है, वो है, बिना देखे भी। यह भारतवर्ष का ज्ञान, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए उसको ज्ञान हो ज्योग्राफी का, भूगोल, ये सब ऐसे ऐसे, फिजिक्स का ज्ञान है, रसायन शास्त्र का ज्ञान है, केमिस्ट्री का सब ज्ञान, वो कह सकता हमको ये ज्ञान है, वो ज्ञान है। और कोई पूछे कि तुम कौन हो, ये जानते हो, तो वो नहीं बता पाएगा कि मैं कौन हूं। अगर इस तरह से प्रश्न किया जाए पश्चात जगत में कि आप कौन हैं, तो आदमी सीधे बताएगा अपना कोई नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और अपने बारे में बताएगा कि गोरा हूं कि काला हूं कि क्या हूं, ये हूं। तो ये तो शरीर का परिचय हुआ है। आत्मा शरीर से भिन्न है। भगवत गीता का प्रारंभिक ज्ञान यही है कि आत्मा को शरीर से बिल्कुल भिन्न समझ लेना। और श्री बलराम जी यहीं पर ये ज्ञान दे रहे हैं। शरीर को मैं मानने के कारण ही शरीर के संबंधियों में या शरीर को सुख देने वाले लोगों में यह बुद्धि होती है कि ये हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद। देह भगवान ऋषभ जी ने कहा है कि यह देह आत्मा को दिया जाता है उसको दुख देने के लिए, क्लेशद क्लेशान ददाती इति क्लेशद, जो बहुत क्लेश दे दुख दे उसको क्लेशद कहते हैं। अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि बेटा यह देह क्लेश देने के लिए है, क्लेश देने वाले पारक के और अचित जड़ शरीर को आत्मा मान लेता है कि यही मैं हूं। कितना बड़ा अज्ञान है उसका, और उसी अज्ञान के अनुसार उसके सारे व्यवहार होते हैं। तो यहां पर जैसे रुक्मी की दशा है, नहीं रुक्मिणी जी की दशा है, रुक्मिणी जी अपने भाई के विरूपकरण पर इतना शोक कर रही हैं, परंतु वहीं पर हजारों वीर मार दिए गए हैं, उनके विषय में उनको कोई शोक नहीं हो रहा है। बल्कि भगवान के पास उन्होंने पत्र लिखा था कि निर्मथ चैद मगधेन्द्र बलंत्र सह्य माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर शुल्का, हे प्रभु आप जरासंध आदि की सेना को मथ करके, मथने का मतलब उनको मार करके तहस नहस करके राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। तो जरासंध शिशुपाल आदि मारे जाए जान से तो इसके लिए खुशी है, और भाई यदि कुरूप केवल कर दिया गया तो इस पर इतना बड़ा दुख हो रहा है। तो भगवान को एक अवसर मिल गया उपदेश करने का, एक बहाना मिल गया जीवों को शिक्षा देने का। देखिए क्या भावना है जी। तो सबसे पहले श्री बलराम जी ने यह कहा कि तुम्हारी यह बुद्धि ठीक नहीं है इस प्रकार की भावना करना। तो तीन कारण बताया श्री बलराम जी ने कि क्यों तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए कि प्राणियों में जो दुर्हृद हैं, वास्तव में तुम्हारे अहितकारी हैं, उन्हीं में तुम सुहृद की भावना कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा अहित करने वाला तो रुक्मी हुआ, भगवान के साथ संबंध होने में बाधक बना, इस तरह से कहते हैं कृष्ण को मारने आया, प्रतिज्ञा करके आया है ना राजाओं की सभा में कि कृष्ण की हत्या करके अपने बहन को लौटाऊंगा, यह कह करके आया और आने के बाद भी प्रयास किया है। तो यह तुम्हारा दुर्हृद है, अहितकारी है, लेकिन इसमें तुम सुहृद भावना कर रही हो तो यह तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तुम ये सोच रही हो कि इसका अच्छा होना चाहिए, इसका भद्र होना चाहिए। तो रुक्मी का भद्र तो यही है ना कि कृष्ण को नहीं रहना चाहिए संसार में, या तुम्हारा विवाह भी कृष्ण से नहीं होना चाहिए, यही उसका भद्र है ना। तो अगर ऐसा किया जाए तो और सबका अभद्र ही हो जाएगा, जो वास्तव में सुहृद है उनके खिलाफ होगा। तो रुक्मी को यदि दंड नहीं दिया जा रहा है तो यह सारे सुहृदों को दुख का कारण होगा, इसका मतलब उनको दंड दिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक ही स्थान में तुम शिशुपाल आदि के प्रति ये भावना कर रही हो कि ये लोग मारे जाएं, और उन्हीं के ग्रुप का है बल्कि लीडर है, और उसको ये कह रही हो कि इसको कुरूप नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो और लोग मारे जाए, इसको श्री बलराम जी कह रहे हैं ये विषमा बुद्धि, तुम्हारी विषम बुद्धि है, और इसी का समर्थन में कर रहे हैं कि यह जो बुद्धि है, ये दुर्हृद या सुहृद या उदासीन, इस संसार में सब भौतिक देह के ऊपर चलता है। वास्तव में आत्मा का हितैषी कोई और होता है, या आत्मा का विरोधी कोई और होता है। तो जैसा मैं कल व्याख्या में कुछ कहा था कि श्री कृष्ण के विषय में कोई बताता है और श्री कृष्ण से एनी हाउ जोड़ता है व्यक्ति, तो यही आत्मा का हित। अन्यथा जीव को उसके स्वरूप में करने के अतिरिक्त और जो भी सहायता है वह सब बेकार है। जैसे भागवत में उदाहरण दिया गया है, हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाड़ा में तो मिक्षितम हित्वा महानस्तम यदि सज्जते गृह तदा महत्व वैसा दंपति नाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान नरसिंह देव से कि हे प्रभु, जीवों के लिए आप वैसे आवश्यक हैं जैसे मछलियों के लिए जल आवश्यक है। जल से बाहर करके मछली को किसी भी उपाय से सुखी नहीं किया जा सकता है। यह स्वरूप है मछली का कि जल में सुखी रहेगी, यही उसका स्वरूप है। परंतु उसको जल में न रख करके, उसके स्वरूप को न पहचान करके कोई व्यक्ति बहुत सौहार्द भाव से मछली को सुखी करने का दूसरा प्रयास करे तो सारे प्रयास विफल होंगे, मछली सुखी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मछली को कोई यह कहे कि इसको बासमती का राइस खिलाओ खूब अच्छा कुकिंग करके, अथवा सब प्रकार की मिठाइयां खिलाओ, खीर पिलाओ, और अथवा इसे झूला झुलाओ, झूला झूले कुछ हवा लगेगा तो ठीक हो जाएगी, वो तो जैसे हवा लगेगी और बिगड़ती जाएगी। दूसरा सुहृद आता है कहता है नहीं इसको बैवान पर घुमा दो, कुछ बैवान पर घुमाओ। चाहे तीसरा सुहृद आता है, चौथा वो कहता है नहीं नहीं सुंदर गीत सुनाओ, वीणा बजाकर सारंगी बजा करके खूब गाओ, इससे सुखी हो जाएगी। दूसरा कोई कहे नहीं मसाज करो, विविध तेल ला करके और इसके शरीर में लपेटो, यह करो वह करो। कोई कहेगा नहीं नहीं रेशमी कपड़ा सिला दो, जाड़ा लग रहा है ढक दो, स्वेटर पहना दो, जूता पहना दो, किसी भी हालत में मछली की हालत बिगड़ती जाएगी। तो इस तरह वास्तव में हम लोग कृष्ण के अंश हैं, हम लोग भी स्पिरिट हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो बिना कृष्ण के संपर्क के हम सुखी हो ही नहीं सकते किसी भी उपाय से, और कुछ भी दे दिया जाए, स्वर्ग दिया जाए या इस पृथ्वी का भोग, कुछ भी, लेकिन जीव की हालत बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती जा रही है। जीव यही समझते हैं कि इसको ये देना है सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं। तो हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाणम यो तोयम इप्सिकम, जैसे झकों के लिए मछलियों के लिए तोयम इप्सिकम जल आवश्यक है, उस तरह से हरि आवश्यक है, श्री कृष्ण आवश्यक है जीव के लिए। तो इस तरह से मान लीजिए कोई सुहृद है और किसी जीव का वास्तव में हित करना चाहता है, परंतु जीव के स्वरूप का उसे ज्ञान ही नहीं कि है कौन। जैसे मछली का हित ऐसी है लेकिन उसको ये पता न हो कि मछली जल में सुखी रहती है, वो तो कहेगा कि इसको दूध में डाल दो। मछली को सौहार्द भाव से कहेगा कि जल में मत डालो, जल में क्या डालना है, खूब अच्छा दूध में डाल दो, दही में डाल दो, तो मर जाएगा मछली, मर जाएगी इस तरह से। तो जो भी यहां पर व्यवहार है अज्ञान में है। और एक और उदाहरण दिया जाता है सपना का। सपना में मान लीजिए कोई हितैषी किसी की सहायता कर रहा है, यह कोई शत्रु उसको मार रहा है, उसका धन छीन रहा है, दोनों मिथ्या है। आगे श्री बलराम जी बताएंगे, कोई कुछ नहीं हेल्प कर रहा है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि सुहृद दुर्हृद उदासीन इति देहात मानी नाम विचार, यह हमारा सुहृद है और यह हमारा दुर्हृद है, इस प्रकार, और यह उदासीन है, इस प्रकार की भावना करना यह देह को मैं मानने वाले बहुत बड़े अज्ञानियों का विचार है। कौन किसका सुहृद है और कौन किसका दुर्हृद, क्या हित करेगा इसमें, वो क्या भौतिक हित करेगा। संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है, जन्म मरण में, कर्म बंधन में है, यहां पर किसी को कुछ देना, कुछ सहायता करना, क्या उसका हित है। और कोई किसी का कुछ छीन लिया तो क्या अहित किया, जाल ही तो छीना। ये सब जितने हैं धन घर शरीर आदि भी, ये सब आत्मा के लिए बंधन है, और कोई व्यक्ति इनको छीन लेता है तो वह अहित किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कोई इस जाल को बढ़ा दिया और टाइट कर दिया तो कहा जाए कि सुहृद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। या कोई उदासीन, तो इति देहात्म मानी नाम, देह को ही आत्मा मानने वालों का यह विचार।
तो यह आत्मा, आत्मा एक ही है, एक का यहां अर्थ है एक समान रहने वाला, और परह का अर्थ है शुद्ध। यहां परह का अर्थ है, परह का डायरेक्ट ये अर्थ है कि देह से भिन्न, पर आत्मा पर है अर्थात शुद्ध है बिल्कुल। सर्वेशमपि देहिनः, जितने भी देहधारी हैं, 84 लाख जोनियों में जितने भी देहधारी हैं, प्रत्येक देह के भीतर आत्मा वास्तव में बिल्कुल शुद्ध रूप में है और एक है। लेकिन नानेव गृह्यते मूढ़ जथा ज्योतिर्जथा नभः, लेकिन जो मूढ़ हैं, ना समझ हैं, वे आत्मा को अनेक रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे एक शरीर में एक आत्मा है, तो वही आत्मा वृक्ष शरीर में जाता है या पशु शरीर में जाता है, अथवा मनुष्य शरीर में भी है तो उस आत्मा को कोई मानता है कि हमारा शत्रु है, कोई मानता है कि हमारा मित्र है, कोई मानता है कि उदासीन है। आत्मा जैसा है वैसा है, शरीर से बिल्कुल भिन्न है, परंतु एक जीव के प्रति लोगों की भिन्न भिन्न भावना होती है। इसलिए श्री बलराम जी कहते हैं मूढ़ जो नहीं जानते हैं आत्मा के स्वरूप को, वे आत्मा को बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं, शरीर के अनुसार वर्णन करते हैं। जैसे शरीर काला है तो वो समझते हैं कि वो काला व्यक्ति है, आत्मा भी काला है। तथा कथित ज्ञानियों के समाज में इस बात की चर्चा होती है। जब जटभरत जी पालकी ढो रहे थे राजा रहुगण की, तो राजा रहुगण एक तर्क में कह रहे हैं कि हम तो ऐसा समझते थे कि शरीर के अनुसार आत्मा है, यदि राजा का शरीर है तो आत्मा भी राजा ही है, कंगाल का शरीर है तो आत्मा कंगाल। और उन्होंने जोर भी दिया इस बात पर कि भले आत्मा प्रकृति से परे हो, परंतु प्रकृति के संग में है, शरीर के संग में है, तो शरीर का प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही, तो अछूता कैसे रह सकता। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पर शुद्ध है आत्मा, शरीर से बिल्कुल भिन्न है। शरीर चाहे कटे सड़े गले, काला हो गोरा हो, अमेरिकन हो इंडियन हो, कुछ भी हो, आत्मा पर थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता है, बिल्कुल शरीर से परे है। इसलिए भगवान गीता में इस बात को और ज्यादा विस्तार से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्यापो नशो शयति मारुतः। इसको हवा नहीं सुखा सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकता। यही है पर शुद्ध आत्मा रहता है। परंतु मूढ़ जन आत्मा को शरीर के अनुसार देखते हैं, देश के अनुसार देखते हैं, काल के अनुसार देखते हैं, इस तरह मूढ़। गीता में भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं, शरीरम जद वापनोति जच्चापित क्रामति स्वर, ऐसे कहते हैं। और हाँ, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। किस तरह जीव उत्क्रामंतम शरीर छोड़ता है, उत्क्रामंत स्थितम वापि, या शरीर में आत्मा रह रहा है अथवा शरीर को छोड़ता है, और शरीर में रह करके भुंजानम वा गुणान्वितम देह में अविष्ट होकर किस तरह विषयों को भोगता है इंद्रियों के द्वारा, तो विमूढ़ नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग इसे नहीं जान पाते। विमूढ़ का अर्थ प्रभुपाद जी गधा किए हैं एकदम। मनुष्यों में इतना डल है तो उनको सीधे ऐश काट है परंपरा, जैसे विमुद्ध गधे नहीं समझ पाते, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर गया तो चला गया है। और कुछ तो ये भी मान्यता रखते हैं कि शरीर ही आत्मा है, इसको कब्र में खूब सजा करके रखो, एक दिन जजमेंट का दिन आएगा तो ये उठेगा, ऐसा बोलते हैं। और आत्मा तो गया, वहां जजमेंट में देर नहीं होती है, पहले ही सब कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ पहले ही फाइनल हो जाता है, शरीर से निकले बस। ऐसा नहीं है कि अब इतना देर ईश्वर के दरबार में होगा तब तक शरीर सड़गल कर खत्म हुआ तो उठेगा कौन, ये विचारणीय बात है। वो दिन आएगा, पता नहीं कब वो जजमेंट होगा, तब तक क्या जीव इसी तरह से सोया रहेगा? मतलब तो जीव गया, भगवान गीता में कहा तो शरीर छोड़कर चला जाता है, जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य च जो मर गया अर्थात शरीर को छोड़ दिया, उसको दूसरा शरीर लेना है, गया दूसरे शरीर में, जजमेंट लेने के लिए वो कब्र में नहीं पड़ा रहेगा लाखों वर्ष। इसको कहते हैं विमुद्धा, विशेष मुद्धा, विमुद्धा नान उपसंत, वो नहीं जानते, पसंती ज्ञान चक्षु से, जिनको ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का नेत्र है, वे लोग जानते हैं कि आत्मा शरीर में भोग रहा था विषयों को, आत्मा सुख दुख का अनुभव कर रहा था, आत्मा शरीर में था, शरीर को चालित कर रहा था, आत्मा चला गया। ज्ञान चक्षु से जिनको शास्त्र का ज्ञान है, गुरुजनों का संग है, वे लोग इस बात को समझ जाते हैं। कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि हिंदू लोग ये मरे हुए लोगों को पानी देते हैं, क्या वो पानी मिल जाता है उनको, कई बार तर्क करते हैं। यहां तक तर्क में कहा गया है कि यदि मरे हुए लोगों को कुछ चीज पहुंचाया जा सकता है जबकि उनका पता नहीं है कि कहां गए, तो रास्ते में जो लोग जाते हैं प्लेन में ट्रेन में, तो उनको बंद करके भोजन देने की क्या जरूरत है, ये तो पता रहता है कि यहां पर है, उनको क्यों नहीं भेज देते हैं, ये तर्क देते हैं, रास्ते में क्यों नहीं भेज देते हैं। यदि यह सत्य है कि मृतात्मा को भेजा जा सकता है, तो फिर सवारी में चढ़े हुए आदमी को क्यों नहीं भेजा जा सकता है, उस समय देने की क्या जरूरत है शुरू में, ये तर्क कर रहा था एक व्यक्ति। इस प्रोसेस पर विचार नहीं करता है। देखिए, प्लेन पर चढ़े हुए व्यक्ति के लिए तो शुरू में ही बांध करके दे सकते हैं, अथवा लास्ट में भी पहुंचा सकते हैं, बीच में देने की तो कोई व्यवस्था नहीं है वहां, बीच में कौन ले जाकर के देगा, दूसरे जहाज से टकराएगा, मर जाएंगे सभी, कौन देगा, विधि नहीं है। तो जो ये विधि काम नहीं करते हैं, तो लोग समझते हैं कि बस और जगह भी ये विधि नहीं है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई विधि है कि कोई वस्तु उस व्यक्ति को कैसे मिल जाती है समय पर, ये सूक्ष्म विधियां हैं, परंतु सत्य है। यहां पर उसका पुत्र या भाई या कोई संबंधी उसके लिए पिंडदान करता है, कुछ शुभ कर्म करता है, तो वह जा करके फल मिलता है उसे, अमृत के रूप में, वस्त्र के रूप में, घर के रूप में, या यहां तक वो मुक्त भी हो जाता है, जैसे धुंधकारी मुक्त हो गया गोकर्ण जी के भागवत से, स्पष्ट शास्त्रों में सब उल्लेख। तो जो आत्मा को आत्मा के रूप में समझते हैं वे तो ठीक समझ जाएंगे, लेकिन देह को ही जो आत्मा समझते हैं वे गधे नहीं समझ पाएंगे इस बात को, वो तो कभी नहीं समझेंगे। विमुद्धा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। श्री बलराम जी यहां कहते हैं कि जो मूढ़ होते हैं वे आत्मा को अनेक रूप में देखते हैं। उदाहरण दे रहे हैं जो दो, जथा ज्योति ही जथा नभ। जथा ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है यहां जैसे चंद्रादि ज्योति, चंद्रमा या सूर्य, और नभ का अर्थ है आकाश। वास्तव में आकाश में देखा जाए तो चंद्रमा जैसे हैं वैसे हैं, परंतु अलग अलग बर्तन में जिसमें पानी भरा पड़ा है या तेल है, लोग अलग अलग देश में अलग अलग स्थान पर यदि चंद्रमा को देखें, जथा ज्योति, ज्योति को चंद्रमा को अगर देखें तो जहां जिस स्थिति में है वैसे वो देखेंगे। यदि पानी हिल रहा है हवा के वेग से, पवन के वेग से यदि जल संचालित हो रहा है और वे केवल वहीं पर देख रहे हैं चंद्रमा को, आकाश में नहीं देख रहे हैं, तो वे कहेंगे कि चंद्रमा कटा छटा है, टेढ़ा है, झिलमिल कर रहा है। उनको चंद्रमा गोलाकार दिखाई नहीं दे सकता है। पूर्णिमा का चंद्रमा यहां ये तात्पर्य है कि पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा आकाश में उगा हुआ है, परंतु अलग अलग स्थान में लोग देख रहे हैं, उपाधि से ग्रस्त चंद्रमा को देख रहे हैं। उपाधि का अर्थ ये है, उपाधि का अर्थ है जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा। तो जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है तो जल के जो धर्म है कंपन आदि वो चंद्रमा में दिखाई पड़ेंगे, जबकि चंद्रमा जल से बिल्कुल अछूता है, वो लाखों करोड़ों योजन दूर है, परंतु उसको जल के भीतर व्यक्ति देखेगा तब तो लगेगा कि चंद्रमा कटा छटा टेढ़ा है, ऐसा है वैसा है। इसी तरह जो व्यक्ति शरीर की उपाधि से बांध करके जीव को देखता है तो वह तो देखेगा अनेक प्रकार से जीव को देखेगा, वो काला है, गोरा है, वो पशु हो गया, वो चींटी हो गया, वो पक्षी हो गया, वो ये हो गया, वो हमारा सुहृद हो गया, हमारा दुहृद हो गया। लेकिन वास्तव में आत्मा की सहज जो स्थिति है उसमें देखे तो उसी चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ेगा जो बिल्कुल अचल है, स्थिर है, उसमें कोई झलमलाहट नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, कटा छटा नहीं है, इस तरह से देखेगा। तो जथा ज्योति, जैसे ज्योति को घटने उदकादिशु से सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं, यदि चंद्र के प्रतिबिंब को या सूर्य के प्रतिबिंब को जल आदि में देखेगा तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो दोनों तरह से अज्ञान छा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वसुदेव जी उदाहरण दिए हैं, कंस को समझा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेता है, ये भ्रम हो जाता है। तो वो भी यहीं पर ऐसा ही उदाहरण दिए हैं, ज्योतिर्जथैव दक् पार्थिवे स्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते। जैसे किसी बर्तन में हम जल लें रात्रि के समय और बाहर हो और चंद्रमा उगा हो, तो जल में हम देखते हैं कि चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा जल के गुण से अविष्ट दिखाई देगा। जल पर हवा चल रहा है और हवा के वेग से जल हिल रहा है, तो जल के हिलने से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो बहुत कंपनशील दिखाई देगा, कई टुकड़ों में चंद्रमा दिखाई देगा, कभी लंबा दिखाई देगा, कभी झिलमिल झिलमिल ऐसे अस्थिर नहीं दिखाई देगा। और इसके साथ ही साथ एक और बात हम लोग देखते हैं कि जल चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा टेढ़ा दिखाई देता है कांपता हुआ और जल चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जल में जो चमक है वह जल की चमक नहीं है, वो चंद्रमा की चमक है। लेकिन चंद्रमा में जो टेढ़ापन दिखाई दे रहा है, कटा छटा दिखाई दे रहा है, वो चंद्रमा का धर्म नहीं, वो जल का धर्म है। तो जल जो है वो शरीर स्थानीय है और चंद्रमा आत्मा स्थानीय है। तो जैसे जल में अपनी चमक नहीं है, चंद्रमा की चमक है, उसी तरह से इस शरीर में जो चेतना है यह शरीर का धर्म नहीं है, ये शरीर की चेतना नहीं है, आत्मा की चेतना इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। आत्मा है इसलिए हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुन रही है। तो जैसे जल में चमक होती है वो जल की चमक नहीं होती है, यदि चंद्रमा हट जाए या पर्दा डाल दिया जाए तो जल नहीं चमकेगा। उसी तरह से आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर शरीर में कोई चेतना नहीं रह जाएगी। तो यह है आत्मा के धर्म को शरीर पर आरोपित करना। आत्मा का धर्म है ज्ञान और आनंद, सहज आनंद। सहज आनंदमय आत्मा है और ज्ञानमय है। तो शरीर को हम लोग समझते हैं कि यह चेतन है और यह आनंदमय है। इसमें जो भी आनंद की अनुभूति हो रही है वास्तव में वो आत्मा की अनुभूति है, वो आत्मा के कारण आनंद है। इसी कारण से श्रील वसुदेव जी कहते हैं कि यहां तक कि सुअर के शरीर में भी जब आत्मा रहता है तो आत्मा का आनंदांश विकीर्ण होता है देह में, इसलिए वही देह व्यक्ति को बहुत प्रिय लगता है, कोई भी हो, क्योंकि आत्मा उसके साथ है। किसी बर्तन में आग का गोला रखा जाए तो बर्तन को उत्तप्त कर देता है। उसी तरह से आत्मा शरीर में है, मन में है, अतः वह शरीर को आनंदमय कर देता है। यह आनंद शरीर का नहीं, आत्मा का है। अच्छा, तो जैसे अभी दूसरा उदाहरण है किस तरह शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं। तो जैसे चंद्रमा कटा छटा दिखाई देता है, झलमल कंपन युक्त दिखाई देता है, उसी तरह से शरीर के धर्मों को हम लोग आत्मा पर आरोपित करते हैं। आत्मा वास्तव में आनंदमय है, चिन्मय है, लेकिन शरीर के धर्म को आरोपित करते हैं। शरीर काला, आत्मा काला है, आत्मा ये पक्षी है, आत्मा यह है, आत्मा वह है, आत्मा यह है, आत्मा नहीं है। तो शरीर के धर्म को, धर्म मतलब स्वभाव, शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं और आत्मा के धर्म को शरीर पर आरोपित करते हैं। दोनों तरफ से भ्रम होता है। इसको श्री बलराम जी यहां कहते हैं मूढ़ ही नानेव गृह्यते। जो मूढ़ होते हैं वे लोग आत्मा को अनेक प्रकार से देखते हैं, जथा ज्योति जथा नभ। और इसी तरह से नभ आकाश, आकाश जैसा है वैसा है और बिल्कुल निर्लिप्त है। भगवान से इसको उपमा दी जाती है, आत्मा से उपमा दी जाती है। किस तरह से निर्लिप्त है आकाश और कितना महान है, कभी कट नहीं सकता, बंट नहीं सकता, लेकिन फिर भी मूढ़ लोग कहते हैं कि आकाश कट गया है। जैसे घटाकाश घड़ा है तो घड़ा के भीतर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, घड़े में बंद आकाश। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, यहां पर एक घड़ा है, हम कहते हैं कि आकाश घड़े के आकार में हो गया है, लेकिन घड़े को हटाते जाइए धीरे धीरे तो जो आकाश था वो जेव कहते हैं उसमें रहता और स्थान बदल जाता है। तो कहां का आकाश कटा? आकाश कभी कट नहीं सकता। यहां पर हम दीवार बना दें तो ऐसा नहीं है कि आकाश उतना कट गया, या दीवार गिर गया तो आकाश नया बन गया। और आकाश में बादल घिरते हैं, हवाएं चलती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि अब जाड़े के दिन में बहुत बादल छाया है, बर्फ पड़ा है तो आकाश ठंडा हो गया है। आकाश ठंडा नहीं होता, हवा ठंडा होती है। आकाश जैसे है वैसे है। यदि आग लगे आकाश में तो आकाश गर्म नहीं होता है और बर्फ पड़े तो ठंडा नहीं होता है। बादल घिरे चाहे बादल न रहे, अनावरण प्रकाश हो, आकाश आकाश। घर बन जाता है तो लगता है कि मठाकाश। इसी तरह शंकराचार्य जी इन शब्दों का प्रयोग कर मठाकाश घटाकाश, मठ के अंदर आकाश बंद हो गया, जैसे इस रूम में आकाश है चौकोर। लेकिन यह रूम न भी रहे तभी आकाश यहां का ज्यों के त्यों रहेगा। तो जैसे मूढ़ लोग आकाश, एक ही आकाश को अनेक रूप में देखते हैं और चंद्रमा आदि के ज्योति को जल आदि में अनेक प्रकार से देखते हैं, वैसे ही आत्मा वास्तव में एक है, लेकिन लोग उपाधि से युक्त आत्मा को अनेक प्रकार से देखा करते हैं। शरीर से बाध करके इसको देखना चाहिए। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा शब्द एक बार कहा था, हमको याद नहीं आ रहा है कहां पर। वो कह रहा था कि स्वामी जी जीते तो सब हैं लेकिन शरीर से थोड़ा अलग होकर जीना सीखना चाहिए। शरीर से अलग होकर के जीना सीखना चाहिए। कैसे अलग रह करके सीखना? अलग रहने का मतलब है कि विचार से, ज्ञान से अपने को शरीर से भिन्न समझे। तो आत्मा वास्तव में शरीर से भिन्न है और शुद्ध है। सर्वे समपि देहिना, भले वो सुअर के देह में है अथवा देवता के देह में है, इससे आत्मा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। सर्वे समपि देहिना, आत्मा शुद्ध है लेकिन मूढ़ लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं। तो इसमें आत्मा का ज्ञान दिया भगवान श्री बलराम जी ने। लेकिन प्रश्न ये हो सकता है, जैसे श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, कुतस्तर ही न चंद्रादिवत आत्मानम एकम शुद्धम प्रतिमा। ठीक है, आप कहते हैं कि चंद्रादि की तरह, ज्योति की तरह और आकाश की तरह आत्मा है, लेकिन जल आदि में या घट आदि में मूढ़ लोग उसे अनेक प्रकार से देखा करते हैं। परंतु हम लोग तो साफ देखते हैं कि चंद्रमा आकाश में है, और आकाश को भी हम लोग देखते हैं कि यह निर्लिप्त है। तो आत्मा की प्रतीति अनुभूति क्यों नहीं हो पाती है इस प्रकार से कि आत्मा बिल्कुल भिन्न है शरीर से? तब श्री बलराम जी कहते हैं कि देह आद्यंत वानिश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्य विद्या क्लृप्त संसार यति देहिनम। देह और देहिनम, इस श्लोक में दो शब्द का प्रयोग किया गया है। देह का अर्थ तो स्पष्ट है, ये देह दो प्रकार का देह होता है, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। तो सूक्ष्म देह के लिए ही वर्णन किया जा रहा है और स्थूल के लिए भी। तो देह क्या है? ऐसा देह यह देह आद्यंतवान, आदिवान अंतवान, आद्यंतवान, इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत होता है। अंतवान है और आदिवान है, युक्त है, लगा हुआ है। शुरुआत होती है इसकी और इसका नाश होता है। क्योंकि आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है, आत्मा की कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं है। लेकिन ऐसा देह यह देह आद्यंतवान, वान दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा, आदिवान और अंतवान, आदि से युक्त है अंत से युक्त है। और है क्या? देह का वर्णन किया जा रहा है कि देह की का प्रारंभ होता है और देह का अंत होता है। बीच में इसमें मैटेरियल क्या लगा है इस देह में? द्रव्य प्राण गुणात्मक, आत्मक का अर्थ होता है मात्रा। देह किस चीज से बना है? और तीन चीज से, अधिभूत और अध्यात्म और अधिदैव इसको कहते हैं। इस शरीर में कुछ द्रव्य है, द्रव्य पांच हैं, भूमि रापो जलम पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनको द्रव्य कहा गया है। सभी प्राणियों के देह में ये पांच चीजें हैं। केवल पांच चीज रहेंगे इसी से देह कह देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसी के कारण ये देह नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बस में लोहा लगा है, रबड़ लगा है, शीशा लगा है, तो ये सारे सामान एक जगह ला करके रख दिए जाए तो इसे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बस है या एक कार है। सामान रख देने से ही नहीं होगा। तो इस शरीर में केवल अगर यह कहा जाए कि पंच तत्वों से बना हुआ है, पांच तत्व इसमें है, तो इसी से शरीर नहीं हो जाता है। और क्या चाहिए? प्राण। प्राण का अर्थ है इंद्रियां। इसमें इंद्रिय चाहिए, इंद्रियां रहेंगी तभी इसको देह कहा जाएगा, ऐसे नहीं कहा जाएगा। तो कहीं माटी और कहीं जल ला करके अलग अलग रख दिया जाए, चाहे एक में ही रख दिया जाए, सान दिया जाए। माटी के साथ पानी साना जाता है और आग में पका दिया जाता है, हवा में सुखा दिया जाता है, आकाश में खड़ा कर दिया जाता है, तो इससे वो देह नहीं हो जाएगा, उसमें इंद्रियां चाहिए। अच्छा, इंद्रियों के अतिरिक्त तो और भी चीज उसमें लगा है, गुण है। यहां गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर अधिष्ठित देवता, जो इंद्रियों को चालित करते हैं, इनको अधिदैव कहते हैं, और इंद्रियों को, मन को अध्यात्म कहते हैं, और पंच तत्वों को द्रव्य कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य प्राण गुणात्मक है, यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसके साथ इसमें इंद्रियां हैं और इंद्रियों के नियामक देवता है। इतना जब कंप्लीट होता है तब इसको देह कहा जाता है। देह आद्यंतवान ऐसा प्राण, द्रव्य प्राण गुणात्मक इस तरह से है। लेकिन भूल क्या हुई है जीव में कि आत्मनि अविद्या क्लिप्त, आत्मा के स्थान में इसी देह को मान लेते हैं मूर्ख लोग। देह अलग वस्तु है, देही अलग है, देह वाला देह से भिन्न है, देह वाले को देही कहते हैं। जिसके पास धन है तो उसको धनी कहते हैं, जिसके पास देह है उसको देही कहते हैं। जैसे धन से धन वाला अलग है, उस तरह से देही अलग है। परंतु देही इतना बेवकूफ हो जाता है, इतना उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है कि वह आत्मा के स्थान में इस देह को मानता है। आत्मनि अविद्या क्लिप्त, आत्मा के अपने स्वरूप में इस देह का ही वह अध्यास करता है कि मैं देह हूं, देह हूं, और इसी भावना के कारण यह जो देह है सूक्ष्म देह, वह देहिनम संसारयति, देही को, आत्मा को संसारयति, संसारयति का अर्थ है कि संसार में चलाता रहता है, जन्म मरण भूख प्यास ये सब सहना पड़ता है देही को, इसके कारण होता है। देह देही को संसारयति, इसे बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, देहिनम ऐसा देह संसारयति। अब बताइए, चिन्मय वस्तु को, जीव को जड़ शरीर लताड़ रहा है संसारयति। संसारयति का अर्थ है कि वो डालता है, गर्भ में डालता है, मरण में डालता है, रोग दुख भूख प्यास आदि, ये सब आत्मा में नहीं है, लेकिन आत्मा के स्थान में देह को कर दिया गया है क्लिप्त। क्लिप्त का अर्थ होता है बिल्कुल रख देना, रखने का अर्थ है कि मन में अभिनिविष्ट हो जाना, सोचना कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं यह हूं, वह हूं, इसलिए देही को इस देह के अनुसार चलना पड़ता है। तो यही इसके जन्म मरण आदि का कारण है, यह देह ही कारण है। ऐसा देह जो आद्यंतवान है और द्रव्य प्राण गुणात्मक है, यह आत्मा के स्थान में आकर के आत्मा को अपने कब्जे में ले करके उसको फिर जन्म मरण में डाले रहता है। तो नात्मनोन्येन संजोगो विजोगः चासतः सति तद्धेतुत्वा तत्प्रसिद्धे भृगुरूपाभ्याम यथा रवेः। तब यह प्रश्न होता है कि जब देह के साथ इस तरह से संबंध है और संसार भी है, जैसा भगवान ने कहा कि आत्मा के स्थान में ये देह कब्जा कर लिया है, हो गया है, देह बेचारे क्या कब्जा किया है, वो आत्मा ही अज्ञान से मान लिया है कि मैं देह हूं और संसार में डाल ही दिया है, तब तो कैसे शुद्ध रहा। ननु देह संबंधे न अपि संसारे सति शुद्धत्वं गतम एव, अब तो इसकी शुद्धता चली गई ना, जैसे बलराम जी ने कहा कि यह शुद्ध है, पर है, लेकिन रुक्मिणी जी कह सकती है कि जब देह के साथ संबंधित है और आत्मा को जन्म मरण में डालता रहता है, तब तो आत्मा की शुद्धि गई, अब कहां शुद्ध रहा। तो श्री बलराम जी कहते नहीं नहीं नहीं, आत्मा फिर भी शुद्ध रहता है, आत्मा को इस देह से कुछ भी लेना देना नहीं। तब ये कहते हैं नात्मनोन्येन संजोगो विजोगः चासतः सति, हे सती तो मैं अवश्य समझ जाओगे इस बात को, सती संबोधन के द्वारा कह रहे हैं, जो सत से युक्त है उसको सती कहते हैं, तुम ठीक ठीक समझ जाओगी। इस आत्मा का अन्य वस्तु से अर्थात शरीर आदि से कभी भी संयोग नहीं होता है और कभी वियोग नहीं होता है। पहले तो कहे कि आत्मनि अविद्या क्लिप्त, अविद्या के कारण यह देह आत्मा के स्थान में रख दिया गया है। अब भगवान कह रहे हैं कि देह के साथ अन्य के साथ, यहां अन्य का अर्थ देह से बिल्कुल भिन्न, आत्मा से बिल्कुल भिन्न, देह के साथ आत्मा का कभी संयोग नहीं हुआ है और न हो सकता है, न वियोग हुआ है, वियोग भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। तो संयोग नहीं है इसलिए वियोग नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो देह अन्य चीज है, आत्मा से उसका कोई मेल ही नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है, वो दिव्य, ये जड़ वस्तु है, इसलिए इसको अन्य कहा गया। जब दूसरी बात कहते असत, देह है असत है, ये है ही नहीं वास्तव में। असत का अर्थ होता है संस्कृत में जो नहीं है उसका, तो जो नहीं है उस वस्तु से आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है? आत्मा तो है, भगवान ने गीता में कहा ना सतो विद्यते भाव ना सतो विद्यते सतः, न भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टंत स्तनयोस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के द्वारा दोनों का रहस्य बिल्कुल जान लिया गया है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, जो असत चीज है, चीज नहीं कहेंगे वास्तव में, जो असत है उसकी कभी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, भाव का अर्थ है एग्जिस्टेंस, जो असत है उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा ही। तो आत्मा एक वस्तु है, शरीर कोई वस्तु नहीं है, ये असत है। यह तो आत्मा उसके साथ हो रहा है, आत्मा के प्रभाव से टिकता है, नहीं तो बिखर जाता है। देखा जाता है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर फिर उस रूप में नहीं रह जाता है, यह बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। यह अपने आप में सब चीज नहीं है, इसका रूपांतरण हो जाता है, विक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार से नष्ट हो जाता है। एक आत्मा लाखों लाख शरीर ग्रहण करता है और प्रत्येक शरीर विनाशी है, अद्यंतवान है, नष्ट हो जाता है। तो दो कारण से भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा का कभी संयोग नहीं होता है देह से। एक तो यह अन्य है, आत्मा का जो स्वभाव है उसे बिल्कुल भिन्न है, और दूसरी बात यह है कि यह नॉन एग्जिस्टेंट वस्तु है, ये शरीर है नहीं, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। तो यह भी एक सिद्धांत है कि जो वस्तु पहले नहीं रही है और बाद में नहीं रहती है वही समय भी नहीं है, ये सिद्धांत है। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी है नहीं, एक भ्रम हो रहा है, और आत्मा तो पहले से ही है। अजह शाश्वतो यम पुराणो, यह अज है, शाश्वत है, नित्य है। तो यह कैसे माना जाएगा? जी आत्मा को कहा जाता है कि वह अनेक शरीर धारण करता है, शरीर में बुढ़ापा का दुख भोगता है, ये भोगता है, लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा का शरीर से कभी संयोग नहीं हुआ है न वियोग होगा। तो ठीक है, एक बात तो समझ में आ जाती है कि संयोग नहीं है, तो संयोग नहीं है तो इसका अर्थ वियोग है, लेकिन वे कह रहे हैं न वियोग, वियोग भी नहीं है। आत्मा का देह से वियोग नहीं है, यह बात बहुत कम समझ में आ रही है। तो इसका समाधान ये किया जाता है कि यदि आत्मा के साथ कभी संयोग रहा होता, देह का, देह के साथ आत्मा का संयोग कभी रहा होता तब कहा जाएगा ना कि वियोग होता है, लेकिन संजोग ही नहीं रहा इसलिए वियोग नहीं है। अथवा कभी भी वियोग नहीं रहा है इसलिए सदा संजोग है, ऐसे इसको कह सकते हैं, लेकिन यह गलत हो जाएगा। कभी भी आत्मा का इस शरीर से कोई संपर्क नहीं हुआ है और कभी यह दूर भी नहीं हुआ है आत्मा से। इसका मतलब यह है तब हेतुत्वा तब प्रसिद्ध दृग रूपाभ्यम जथा रवे, उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। वास्तव में शरीर से आत्मा का वियोग नहीं होता है, अगर शरीर से वियोग हुआ तो शरीर रहता ही नहीं है, उसको शरीर नहीं कहेंगे, और तब तब तक संजोग रहेगा नहीं, संजोग नहीं रहेगा क्योंकि अन्य 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 नहीं, बिल्कुल भिन्न है तो संजोग भी नहीं है। तब हेतुत्वात तब आगे बता रहे हैं, जैसे आंख है और कोई वस्तु है, हम लोगों की आंखें हैं, आंख से हम कुछ देखते हैं, वस्तु नाना प्रकार की देखते हैं, लेकिन इन दोनों के कारण सूरज है। यदि सूरज न उगे तो वस्तु हम देख नहीं पाएंगे, आंखों की शक्ति नहीं रहेगी, वो वस्तु भी दिखाई नहीं देंगे। प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों की सत्ता एक प्रकार से नहीं रहती है। अच्छा, तब अभी प्रश्न होता है कि क्या भगवान सूरज का संजोग हमारी आंखों से होता है, उन वस्तुओं से, अथवा वियोग होता है? वास्तव में सूरज उगता है, बहुत वस्तुओं को प्रकाशित करके चला जाता है, लेकिन सूरज का संपर्क संजोग इन वस्तुओं से नहीं होता है, न आंख से होता है। सूरज रोज चले जाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूरज का वियोग भी नहीं है क्योंकि आंख को डायरेक्ट प्रकाशित कर रहा है और वस्तु को भी प्रकाशित कर रहा है, तो कहा जाएगा कि इनके साथ सूरज का संजोग है, परंतु वास्तव में संजोग नहीं है और वियोग भी नहीं है, क्योंकि सूरज के अभाव में अथवा किसी दीपक के अभाव में हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, आंखों की वो सत्ता नहीं मानी जाएगी, आंख में शक्ति नहीं रहेगी देखने की, न वो वस्तु प्रकाशित हो पाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे सूरज आंख को और वस्तु को दोनों को प्रकाशित करता है, उसी तरह से आत्मा जब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसमें चेतना भर देता है, तो जड़ शरीर भी संचालित होने लगता है और उसमें रहने वाले जैसे इंद्रियां आदि हैं वो भी सचेतन हो जाती हैं, देवता जो रहते हैं वो भी सचेतन हो जाते हैं, अन्यथा वे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सूर्य इन वस्तुओं को प्रकाशित करता है, आंख में देखने की शक्ति देता है, लेकिन फिर भी सूर्य निर्लिप्त है और चला जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, वैसे ही इस देह में आत्मा रहता है पर फिर भी नहीं रहता है, वो इतना निर्लिप्त है। इस शरीर में रहा, हाथ को चालित किया, पैर को चालित किया, कितना भाषण किया, बोला, लेकिन शरीर छोड़कर चला जाएगा। तो जिस समय शरीर में लगता है कि आत्मा है, वास्तव में है नहीं, शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं है और शरीर से वियोग भी नहीं है, इस माने में कि उसके बिना इसकी सत्ता रहती नहीं है, देह से वियोग नहीं, उसकी सत्ता के बिना देह रहता नहीं है, और देह जब तक है तो इसके साथ उसका संपर्क नहीं है। ये समझने की बात इस तरह से है कि केवल आत्मा तटस्थ भाव से वास्तव में इसमें चेतना का संचार करके चला जाता है, इस शरीर से वो प्रभावित नहीं होता है, बहुत तरह जैसे सूरज आंखों से और रूप से संसार के प्रभावित नहीं होते हैं, लाखों लाखों कोटि कोटि आंखें हैं और रूप हैं, लेकिन भगवान सूरज आते हैं चले जाते हैं, उन पर इन सबका प्रभाव नहीं होता है, जबकि देखने की शक्ति वही देते हैं, वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, आंख में देखने की शक्ति देते हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। शाम को सूरज डूबते हैं तो क्या हाहाकार करते हैं कि हाय हाय मैं इतने लोगों का उपकार किया, इतनी आंखों में शक्ति दिया देखने की, इनकी वस्तुओं को, डूब ही जाते हैं, तो आत्मा चला जाता है। वो उस समय ये चिंता नहीं करता, हाय हाय इस देह में रहे हैं इतना दिन, अब क्या करें, चला ही जाता है आत्मा। तो इस तरह से देह के साथ उसका कभी संजोग नहीं है, वियोग नहीं है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जन्मादेश देह से विक्रिया नात्मना क्वचित कलाना निवर नई गंदर मृत्यु है से कुहरी वर। जन्म आदि जो विक्रिया है, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ दिन रुकना, कुछ पैदा करना, क्षीण होना और अंत में समाप्त हो जाना, ये देह के धर्म है। जन्म देह जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ पैदा करता है, कुछ दिन टिकता है, इसके बाद क्षीण होता है, इसके बाद पूरा पूरा नष्ट हो जाता है, इसको जन्मादेह कहते हैं। तो जन्म आदि जो विक्रिया है, परिणाम है, देहस्य ये देह का होता है, न आत्मन क्वचित, किसी भी समय में आत्मा में सब नहीं होता है। सुने कि आत्मा बढ़ता है, आत्मा क्षीण होता है, आत्मा कुछ पैदा करता है, नहीं, देह की ये सब विक्रिया है। कलाना मिव नई इंदोर मृत्यु यह से कुहरी, जैसे चंद्रमा के कलाओं में ही घटना बढ़ना संभव होता है, चंद्रमा में नहीं। कलाना मिवर न एवं इंदो, हम लोग चंद्रमा को आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा का बहुत उपयोग है, फसलें पैदा करते हैं, औषधि पोषते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन चंद्रमा का इतना बार उदाहरण भागवत में आया है ज्ञान देने के विषय में। चंद्रमा को हम लोग देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। वास्तव में चंद्रमा नहीं घटते हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। कला का अर्थ होता है चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होता है और जो भाग चमकता है उसको कला कहा गया है। चंद्रमा रहता है पूरा, लेकिन जो भाग प्रकाशित होता है उसको कला कहते हैं। तो वो अगर बढ़ता है तो आदमी कहता है चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है, या घट रहा है, घट रहा है। वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होता है या घटता जाता है। तो इस तरह से देह घटता है, चाहे बढ़ता है, चाहे मोटा होता है, चाहे क्षीण होता है, चाहे मरता है, जन्म लेता है, आत्मा नहीं। जन्म आदि विक्रिया आत्मा की नहीं है, देह की है। जैसे चंद्रमा में जो विकार देखा जाता है चंद्रमा का नहीं है, चंद्रमा की कलाओं का। कलाना निवर नई वेन्दोर मृत्यु से कुहरी वा, अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो फिर मृत्यु, मृत्यु तो होती है ना आत्मा की, तब भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मृत्यु यश कुहरी वा। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटते घटते अमावस्या कुहू, कुहू अमावस्या कहते, अमावस्या आ जाती है तो उस दिन क्या चंद्रमा मर जाता है? उस दिन वो रहता ही है, पूरा ही रहता है जैसे है पहले से। लेकिन कुहू को ऐसा कहा जाता है अमावस्या को कि अब इस दिन चंद्रमा बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसी तरह से शरीर के विनाश को ही यश मृति इति व्यवहार, लोग कहते हैं कि आत्मा मर गया, मरा शरीर, लेकिन वे कहते हैं कि आत्मा मर गया। यह इस प्रकार से अज्ञान से व्यवहार किया जाता है। चंद्रमा बहुत सुंदर सहायक है ज्ञान देने में। भगवान दत्तात्रेय जी जो 24 गुरु बनाए हैं तो उसमें एक चंद्रमा भी गुरु है, और यही बात वहां वो कहते हैं, चंद्रमा से हम ये सीखे हैं कि केवल देह में सब विक्रियाएं होती हैं, आत्मा में नहीं। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते हैं, वो यहां पर ज्ञान दिया गया है। तो हम लोग तो रोज चंद्रमा को उगते हुए देखते हैं, डूबते हुए देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके आधार पर बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया है। तो देह में सब विक्रियाएं होती हैं, आत्मा में नहीं होती हैं। तो फिर भी एक प्रश्न होता है, ननु आत्मनो देहादि संबंधा भावे कथम भोक्तृ भोग्य भोग प्रतीति रीति आशंक्य स्वप्न दृष्टांतेन समर्थयति इति। तो प्रश्न हो सकता है कि यदि देह के साथ आत्मा का पूरा पूरा अभाव है, देह के साथ इसका संबंध नहीं है, तो यह कैसे प्रतीति होती है कि मैं भोगता हूं और यह वस्तु भोग रहा हूं और इस तरह से भोग रहा हूं? भोक्ता, विषय और भोग, इन तीनों की प्रतीति कैसे होती है? इस संसार में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं भोगता हूं, मैं कोई चीज खा रहा हूं या पहन रहा हूं और वह वस्तु है एक, जैसे मान लीजिए स्वेटर है, तो मैं तो देख रहा हूं कि मैं पहनने वाला हूं और यह एक वस्तु है और पहनना एक क्रिया है, तीनों तो देख रहे हैं। भोक्ता, भोग्य और भोग, इन तीनों की प्रतीति कैसे होती है जब है नहीं वास्तव में, जब मैं देह नहीं हूं और कोई वस्तु नहीं है इस तरह से, तो कैसे प्रतीति होती है? तब श्री बलराम जी स्वप्न के दृष्टांत से समझा रहे हैं। जथा सयाना आत्मानम विषयान फलमे वच अनुभुंक्ते प्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम। जथा सयान, जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है, तो तीन चीज देखता है, आत्मानं विषयान फलम। सपना में वो देखता है कि मैं हूं भोक्ता, चाहे सुख भोक्ता चाहे दुख भोक्ता वो अलग बात है, लेकिन अपने को देखता है सपना में, मैं हूं और कुछ विषय हैं, कुछ भोग्य वस्तुएं हैं और फल भोग भी देखता है, सुख दुख आदि का अनुभव भी करता है। ये तीनों चीजों सपने में देखा करता है, जबकि तीनों वहां नहीं है बिल्कुल, सपने में तीनों नहीं है, न तो भोगता है और न तो वस्तुएं हैं और न तो वहां वो भोग की क्रियाएं हो रही है। लेकिन सपना में आदमी देख सकता है कि मैं पक्षी बन करके उड़ रहा हूं, कोई ऐसा देख सकता है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, उड़ना नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति सपना में स्वयं ही अज्ञान से इन सब वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, देखता है, लेकिन है नहीं वास्तव में कुछ भी। सोया हुआ आदमी देख सकता है कि मैं अपने घर में ये काम कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं, इधर बैठा हूं, उधर बैठा हूं, वहीं पर जगा हुआ कोई देह में जब आत्मबुद्धि हो जाती है तो इस तरह से दिखाई देता है कि मैं देह हूं, मैं मेरे लिए विषय है भोग्य के और ये इस तरह से मैं भोग कर रहा हूं। यह अभी एक सपना की तरह है, वास्तव में सपना की तरह इसलिए है कि वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है और क्षणभंगुर है। सपना जैसे क्षण भंगुर है, दो चार मिनट के लिए, दो चार घंटे के लिए होता है, चला जाता है, उसी तरह से यह जो जीवन है, शरीर है, वास्तव में सपने की तरह है। सपना के द्वारा बहुत ज्ञान दिया गया है वैदिक ग्रंथों में, दृष्टांत दे रहे। जथा सयानम सयान आत्मानम विषयान फलमेव च अनुभुंक्ते, वो अपने को अनुभुंक्ते का अर्थ अनुभव करता है, विषयों का अनुभव करता है और फल का, भोग का। असत्ति अपि अर्थ है, जबकि अर्थ है, वास्तविकता वहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव तो होता ही है। सपना में कोई वस्तु नहीं है लेकिन प्रभाव होता है, झूठ है। जैसे मान लीजिए सपने में कोई व्यक्ति देख रहा है कि सांप निकल गया हमारे घर में भयानक और हमको डंस भी दिया है, मान लीजिए सपना में देख रहा है, तो डसने पर वो सपना में दुख उसे होगा, दुख का अनुभव करता है, सांप को भी देखता है, डसना क्रिया भी देखता है, अपने को भी देखता है कि छटपटा रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता है। कब रोका जाएगा? जब वो जग जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं सपना से कि जगने के बाद भी घर में टार्च जलाकर देखते हैं कि सांप आ गया है, क्या आ गया है, ऐसे कभी कभी सुना गया है। अरे डंडा लाओ, सांप निकला है, ये निकला है, कुछ भी नहीं, वो सपना में देखे थे, लेकिन इतना प्रभाव पड़ता है कि जागृत में भी वही जो होते रहते देखते हैं। झूठा इस तरह का व्यवहार जहां कोई नहीं है उसका भी प्रभाव देखा जाता है। तो इसी तरह से इस अज्ञान निद्रा में
मैं यह देह हूँ और ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे लिए प्रिय वस्तु है, ये अप्रिय है, और इस तरह मैं भोगता हूँ, भोग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब क्यों नहीं संभव हो सकता है? ये तो रोज ही हम लोग देखते हैं। सपना यदि मान लीजिए कोई आदमी 3 घंटा रोज देखता हो, 3 घंटा रोज सपना देखे और वो कदाचित मान लीजिए 90 वर्ष जिए, तो 3 घंटा दिन भर में 24 घंटे में 3 घंटा तो कितना वर्ष होगा? 12 साल। तो 12 साल तो ऐसे ही झूठी जिंदगी में रहा, बिना मतलब के देखता रहा, कंटिन्यूअस सारे स्वप्न के घंटों को एक जगह कर दिया जाए, सारा ड्रीमिंग आवर्स एक जगह कंबाइन किया जाए, तो 12 साल अखंड झूठा सोचता रहा। ऐसे 12 साल सोचा तो ऐसे 90 साल सोच रहा है, झूठा ऐसे ही सोच रहा है। वास्तव में यहाँ भी कोई संबंध है, न वस्तु है न देह है। आत्मा ये देह तो है नहीं, वो तो दूसरा है, लेकिन अपने को मान रहा है कि मैं ये हूँ। तो इस स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा श्री बलराम जी रुक्मिणी जी को समझा रहे हैं। अब तो बहुत विस्तार करने के बाद आगे ये कथन नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब उपसंहार करते हैं। तस्माद् अज्ञानजं शोकम् आत्मशोष विमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। अतः तस्माद्, इसलिए अज्ञानजं शोकम् अपहृत्य निर्हृत्य, ये जो अज्ञान के कारण तुमको शोक हो रहा है भाई को कुरूप करने का, इसको तुम निर्हृत्य छोड़ो। शोक तो दूर की बात है, इस तरह सोचना भाई कोई है ही नहीं, संबंधी कोई है ही नहीं, ये सपना का सब है खेल। सपना में तुम ये देख रही हो इस तरह से, तुम्हारा भाई है और उसको कुरूप कर दिया गया है, ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने स्वरूप को देखो, ये अज्ञानजम शोकम है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ शोक है। और यह शोक कैसा है? आत्मशोष विमोहनम, ये आत्मा को सुखा देता है। न शोष है कि मार उतर, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहां आत्मशोष का अर्थ है कि आत्मा की सरसता को, आनंदमयता को यह खत्म कर देता है। आत्मा दुखी अपने को अनुभव करने लगता है, यही है आत्मा का सुख जाना। स्वरूप से आत्मा सुखेगा नहीं कभी, लेकिन मन में जो अभाव की कल्पना कर लेता है, दुख अनुभव करता है, इसको आत्मशोष कहते हैं। जो आनंद है वही रस है, लेकिन जब आनंद का अनुभव नहीं होता है तो माना जाता है वो सुख गया है। तो यह जो अज्ञान है, ये शोक जो है, यह आत्मा को सुखा देता है। और विमोह यति, विमोह नाम, ये आत्मा को अज्ञान में डाल देता है, दुख में और अज्ञान में, ये अर्थ है आत्मशोष विमोहन। जीव अपने को भिन्न भिन्न समझने लगता है, तो जीव को और अज्ञानी बना देता है यह शोक, और उसकी आनंदमयता को समाप्त करता है। इसलिए इसको निर्हृत्य, इसको अपा करके, इसको छोड़ करके, तत्व ज्ञान के द्वारा, वास्तविकता के ज्ञान द्वारा इसको छोड़ करके, और हे पवित्र मुस्कान वाली, हे सुंदरी, तुम स्वस्थ हो जाओ, अपने स्वरूप में हो जाओ, स्वस्थ भव। यह स्वस्थ का अर्थ है कि तुम कृष्ण की नित्य प्रिया हो, तुम्हें जो भी सोचना हो करना हो कृष्ण के बारे में केवल सोचो, दुनिया में क्या हो रहा है इसको भूल जाओ, स्वस्थ हो जाओ, स्व में अस्थित हो जाओ, कृष्ण की सेवा करो। तुम्हारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है इस जगत में, तुम्हारे जैसे सौभाग्यवती नारी तो कोई है ही नहीं, और तुम ऐसे अवसर पर रो, ये ठीक नहीं है, तुम स्वस्थ हो जाओ। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं भगवता तन्मयी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। इस प्रकार भगवता रामेण
भगवान राम के द्वारा जब वह तन्वी सुंदरी रुक्मिणी प्रतिबोधिता जब प्रतिबोधित हुई ज्ञान दिया गया तो उसके मन का खेद चला गया और प्रसन्न हो गई। वैमनस्यं परित्यज्य। देखिए यहाँ पर 6-7 श्लोक बोलने से ही रुक्मिणी जी का शोक समाप्त हो गया। कितने प्रवीण हैं भगवान बलराम जी ज्ञान देने में, इतना बड़ा शोक तुरंत समाप्त हो गया। 6-7 श्लोक बोलने में उनको कितने 2-3 मिनट लगा हो गया, 2 मिनट लगा हो, इतने में ज्ञान हो गया। वैमनस्यं परित्यज्य, उसके मन की जो विमनस्कता थी वो चली गई, मन जो उदास था खिन्न था खत्म हो गया। और बुद्धि द्वारा अपने मन को समाहित दे, उसने समाहित कर दिया, ठीक कर लिया, वो प्रसन्न हो गई। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम जी जो प्रवचन कर रहे थे उसको रुक्मिणी भी सुन रहा था, कृष्ण भी सुन रहे थे, रुक्मिणी जी सुन रही थी। तो रुक्मिणी जी का ज्ञान चला गया लेकिन रुक्मिणी का ज्ञान नहीं गया, जबकि सुना था वो भी पूरा। देखिए यहीं पर कितना अंतर हो गया। आज एक व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा था कि रुक्मिणी जब इतना खल हो गया तो रुक्मिणी जी का भाई क्यों हो गया था। पता नहीं भगवान क्या क्या संजोग करते हैं, किसको कैसे कैसे करते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो गए, वो तो भगवान जानते हैं किसको कैसे जोड़ी बैठाना है, इसका क्या क्या कोई मीमांसा करे। लेकिन अंतर कितना है ये सब समझ में आता है। प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विहत बल प्रभ स्मरण विरूप कर्णम विपथात्मा मनोरथ। रुक्मिणी भी सुना लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ और उसका कुछ भी नहीं बचा था। रथ खत्म हो गया, घोड़े मर गए, अस्त्र शस्त्र सब चले गए थे, केवल प्राण बचा था। प्राणावशेष, प्राण अवशेष था, प्राण मतलब शरीर, शरीर भर बचा था, कुछ भी बाकी नहीं था। और दृढ़ भी शत्रुओं के द्वारा, देशियों के द्वारा उसके हत बल प्रभ, उसकी प्रभा और उसकी सेना सब समाप्त हो गई थी। लेकिन यह ज्ञान का भाषण सुनने के बाद भी वो क्या सोच रहा था, स्मरण विरूप करण, वो केवल यह सोच रहा था कि हाय रे हमको ऐसा विरूप कर दिया, हमको ऐसा विरूप कर दिया। बलराम जी इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा शरीर है ही नहीं, तो शरीर विरूप हो चाहे कुछ भी हो, इतना क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन वह उसी चिंता में रहा। रुक्मिणी जी का तो शोक दूर हो गया, वो ज्ञान में हो गई, और इसका शोक और बढ़ गया। ये विरूप करणम स्मरण, यही स्मरण कर रहा है कृष्ण कैसे कैसे मेरी दाढ़ी मुझ काटा, बाप रे बाप मैं कैसे नगर में मुख दिखा पाऊंगा, ये हो गया हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, इसी अज्ञान में रह गया। सहोदर भाई है रुक्मिणी जी का लेकिन ज्ञान नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि घर में पत्नी भजन करती है लेकिन पति अभी कुछ और जगह दिमाग रखते हैं, है ना। पुरुषों में कम ज्ञान देखा जा रहा है। अगर पुरुष भी संडे को आते हैं मंदिर में सब करते हैं, लेकिन प्राय हमने देखा है कि मति नहीं होती। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पति भगवान का भजन कर रहा है पत्नी नहीं कर रही, क्या वैसे जनरल यही है कि पत्नी भजन करती है और पति अभी रुक्मिणी के पथ पर। रुक्मिणी तो नहीं है लेकिन मतलब ज्ञान का उतना असर नहीं हो पाता है। प्रवचन साक्षात भगवान कर रहे हैं और भाई बहन ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन बहन को ज्ञान हो गया, भाई बस उसी शोक में रह गया कि हमको विरोध किया गया, हमको ये किया गया। देखिए इस तरह का अंतर हो गया। वितथात्म मनोरथ, उसके जितने मनोरथ से सब वितथ हो गए, तथा नहीं हुए जथा मनोरथ किया था, तो वितथ कर
विपरीत तथ्य हो गया, उसमें कुछ नहीं रहा, सारे मनोरथ उसके विफल हो गए थे, सब हो गए थे, फिर भी अपने विरूप करण को ही सोच रहा था। तो चक्रे भोज कटम नाम विवासाय महत्पुरम अहत्वा दुर्मतिम कृष्णम अप्रतु ये जवीयसीम कुंडिनम न प्रवेक्षामि इतुक्त्वा तत्वा वसदृश। तो विरूप करण का स्मरण कर रहा था, इसीलिए उसने उसी स्थान पर जहां पर उसका केस काटा गया था उसी स्थान पर एक महान नगर का निर्माण कराया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहां उसको विरोध किया गया वहां क्या बसना है लेकिन भोजकट नाम दिया वो, कितनी चेतना उसकी खराब थी। भोजकट का अर्थ है, कट का अर्थ होता है शपथ संस्कृत में, और भोज उस राज्य का नाम था। तो भोज राज्य का उसने शपथ किया था कि मैं यदि कृष्ण को नहीं मार सका और अपनी बहन को नहीं लौटा सका तो मैं फिर अपने मूल राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। तो भोज राज्य की शपथ लिया था, इसीलिए उसने स्वयं ही नाम दिया उस स्थान पर, उस नगर का भोजकट नाम दिया। अथवा कुछ लोग कहते हैं कि भोज का राजा रुक्मी का केश वहां काटा गया था, उस कटिंग के कारण भोजकट नाम रखा वही चेतना, अरे कोई भगवान के भजन वाले स्थान में बसना चाहिए था, लेकिन जहां उसको विरोध किया गया था उसी स्थान पर बसा, और हमेशा कृष्ण के प्रति द्वेष भाव से भरा रहा कि हमारा ये हुआ था वो हुआ था। अच्छा हुआ होता कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया होता कि कैसे सेविंग किया जा रहा है, और उसी को टांग देता अपने आवास स्थान में कि कृष्ण कैसे मार रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। भोजकट नाम का नगर बस कुंडलम न प्रयोगशामी इतुक्ता तत्र आवसद रुषा। इस पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि तत्र आवसत, तत्र का अर्थ वही, वो जो उसका मुंडन देश था वही उस नगर का देश हुआ, वहीं पर नगर बसाया, मतलब वही सेंट्रल प्लेस हुआ होगा भोजकट नगर का, उस सिटी का बिल्कुल सेंटर तो क्या याद करता होगा, सब लोग जानते होंगे कि इसी के कारण नगर बसा है और इसी चेतना में, उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, वहीं पर क्रोध में बस रहने लगा। तत्र आवसद रूसा, रूसा शब्द क्रोध में रह रहा था, वो ये सोच रहा था कि कभी कृष्ण के प्रति हमारा मनोभाव बदल न जाए, इसलिए जिस स्थान पर कृष्ण ने केस काटा था वहां वो रोज रोज दर्शन करता था, तो उसका क्रोध कृष्ण के प्रति बढ़ता था, यही उसकी कृष्ण भावना थी रोज दर्शन करके कृष्ण से बदला लेने का संकल्प करता था, वही नगर में बस गया। अब यहां तक तो राजाओं के पराजय की बात थी, अब रुक्मिणी जी के विवाह की बात सुनिए। भगवान भीष्मक सुतान एवं निर्जित्य भूमिपान पुरम आनीय विधिवत उपयेने कुरुद्वह। अब यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं, अब तक मार काट में संबोधन की कोई जरूरत नहीं थी। तो कहते हैं हे कुरकुल तिलक, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान इस प्रकार भूमिपान राजाओं को मार करके परास्त करके महाराज भीष्मक की पुत्री को पूरम आनीय द्वारका लाए और वहां ला करके विधिवत उपये में विधिवत विवाह किए। विधिवत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विधिवत जैसी विधि है वैसा शास्त्र में और लोक में भी विवाह की जो विधि है उस विधि से भगवान ने विवाह किया, विधि से विवाह किया। और कार्यों में तो कुछ अविधि चल सकते हैं, लेकिन विवाह में विधि जरूर होना चाहिए, विधि। यह बहुत पवित्र संबंध है, शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, भगवान द्वारा, ऋषियों द्वारा, सब बहुत पवित्र संबंध है, इसलिए इसमें विधि का पालन होता है। तो भगवान ने विधिवत पाणिग्रहण किया रुक्मिणी के साथ। तो जिस समय विवाह का दिन था, कई दिन तक चला, तो उस समय जदुपुरी में द्वारका में महान उत्सव हुआ। और एक विशेषता है द्वारकापुर के लोगों की कि तदा महोत्सव निर्णाम जदुपुरजन गृह गृह अभूत अनन्य भावानाम कृष्ण जदुपतव निर्भ। द्वारका में प्रत्येक व्यक्ति का कृष्ण में अनन्य भाव था। अनन्य भाव का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं प्रेम नहीं था, कृष्ण में ही प्रेम था। कृष्ण को ही प्रत्येक व्यक्ति अपना पुत्र मानता था, अपना बंधु मानता था, जो कुछ भी था कृष्ण को मानता था। अपने घर में और भी लड़के थे लेकिन उनको भी अपना बेटा नहीं मानते थे, सभी कृष्ण को ही मानते थे। अतः रुक्मिणी के विवाह का महोत्सव गृह गृह घर घर में हुआ, सबके घर में उत्सव हुआ। यह स्पष्ट कह रहे हैं, तदा महोत्सव निर्णाम जदुपुर जाम गृह गृह, घर घर में महोत्सव हुआ। घर घर में मंडप सजाया गया था और प्रत्येक घर में विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी जी के साथ। भगवान ने लीला प्रकट किया, जितने घर थे उतने रुक्मिणी और कृष्ण और ब्राह्मण नाई जो थे सब हो गए, सभी घरों में विवाह हुआ और प्रत्येक घर में सभी द्वारका के लोग थे। दूसरे के घर में हो रहा था वहां भी सब द्वारका के लोग थे। इस तरह से गृह गृह महोत्सव हुआ। यह भगवान की स्वाभाविक दिव्य शक्ति है, वे अपने को इस तरह प्रकट किए। अगर कोई इस पर आश्चर्य करे तो आगे पढ़ेगा तो उसका आश्चर्य खत्म हो जाएगा। जिस समय वे 16,100 कन्याओं को लाए भौमासुर का वध करके, तो उनके साथ विवाह भगवान ने एक ही मुहूर्त में किया और सबके साथ एक एक होकर। और ऐसा भी लिखा गया है कि उतने वसुदेव देवकी भी हो गए थे, 16,100 वसुदेव जी, 16,100 देवकी जी, और भगवान के जो भाई थे वे भी सब हो गए थे। और विवाह के समय में जो आवश्यक होते हैं, जैसे तांबूल पान लगाने वाले या कपड़ा साफ करने वाले, सब जो भी था ये सब हो गए थे। किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मतलब हमारे घर विवाह नहीं हुआ, हमारा बेटा है कृष्ण और हमारी पुत्र वधु है रुक्मिणी। यही भाव था, कृष्ण अनन्य भावाना। अनन्य भावाना का अर्थ न अन्य भावाना, सबका भाव वसुदेव जी के समान था, देवकी जी के समान था, इतना स्नेह था। तो सभी अपने घर में उत्सव किए। तो जदुपुरी में गृह गृह घर घर में आनंद उत्सव हुआ, महोत्सव। तो ये इस महोत्सव का अर्थ है विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार सबके घर में हुआ। इस तरह का प्रेम होता है भगवान के परिकरों का भगवान के साथ। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, तदा महोत्सव निर्णाम जदुपुरजन गृह गृह घर घर में हुआ। जो भी महोत्सव हुआ घर घर में हुआ, यह कहने का मतलब है। विवाह के बाद भी जो क्रिया होती है वो भी हुई, उसके पहले हुई, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। तो नरा नार्यश्च मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला, उस विवाहोत्सव के समय नरा नार्यश्च, नर और नारीगण, पुरुष और स्त्रीगण बहुत सुंदर आभूषण पहने थे। आभूषण में यहाँ पर एक आभूषण का वर्णन किया जा रहा है, तो उसके द्वारा अन्य सारे अनुक्त आभूषणों को समझ लेना चाहिए। जैसा मैं उस दिन कहा था कि इसको उपलक्षण कहते हैं, संस्कृत भाषा की विशेषता है, एक वाक्य एक बात कहने से उसके सिमिलर सभी बातें समझ ले जाते हैं। तो सभी कुंडल पहने थे मणि के, मणि का यहाँ अर्थ है सोना या हीरा, कि कुंडल पहने हुए थे और कुंडल बहुत चमक रहे थे। तो इसका अर्थ ही नहीं है कि और गहना नहीं पहने थे, केवल कुंडल का वर्णन करके उनके शरीर में समस्त आभूषणों का वर्णन कर दिया गया और वस्त्र का भी। बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर आभूषण लगाए थे सब, बहुत आनंद में थे, मुदिता परम आनंद में थे, परम सुख में थे। पारिबरहु पाजरहु बरयोश्चित्रवासशः, और वे वरयो का अर्थ वर वधु के लिए, कृष्ण के लिए और रुक्मिणी के लिए बहुत पारिवर ला रहे थे, देय उपहार ला रहे थे देने के लिए, सब कपड़ा ला रहे थे, गहना ला रहे थे, सब सभी घरों में उत्सव था ही। अच्छा, सबके घर में उत्सव था, फिर भी सब दूसरे के घर में भी गए थे, यह भी एक विचित्र बात। उपहार सब ला रहे तो पारी बरहम उपाजरो, ये भागवती सृष्टि है, भगवान के संकल्प मात्र से द्वारका का निर्माण हुआ है, तो इसलिए वहां पर वस्तुओं की कमी की कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, भरा पड़ा है सब कुछ। तो सब लोग पारिवारिक ला रहे थे वर वधु के लिए, यह नियम है कि विवाह के अवसर पर कन्या के लिए और वर के लिए लाना चाहिए, देना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। तो पारिवारिक हम उपाचार बड़े चित्रवास से, उस समय वर और वधु विचित्र वस्त्र पहने थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान से देख रहे हैं दुल्हा के वेश में भगवान कृष्ण को और रुक्मिणी जी को, तो रुक्मिणी जी की साड़ी को भी ध्यान से देख रहे हैं और भगवान के भी। तो चित्रवासो, चित्रवासो का अर्थ होता है अद्भुत, सबसे विलक्षण वस्त्र भगवान जो पहने थे दुल्हा के वेश में रुक्मिणी जी, बहुत सुंदर वस्त्र। अथवा चित्रवास का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर, इस प्राकृत जगत में वैसा वस्त्र नहीं मिलता है, वो तो सब वैकुंठ से आया होगा वस्त्र होगा, भगवान के धाम का वस्त्र चित्रवास। अब यह नर नारियों का वर्णन करके, वर वधु का वर्णन करके, अब संपूर्ण द्वारकापुरी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सा वृष्णिपुर्युतभितेन्द्र केतुभिर्विचित्र माल्यांबर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वार उपकृत बभौ प्रतिद्वार उपकृत मंगलैरापूर्ण कुंभ गुरुधूप दीपकैः। सा बभौ, ऊपर से इसका लेना चाहिए, सा जदुपुरी बभव, वह जदुपुरी द्वारका बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी के कहने का अर्थ है कि ऐसी अमरावती, विभावरी या अलकापुरी कभी भी सुंदर नहीं लगी, अद्भुत सुंदर लग रही थी द्वारका उस समय जब विवाहोत्सव चल रहा था। सा वृष्णिपुरी, हाँ यहाँ स्पष्ट लिखा है, सा वृष्णिपुरी वह जदुपुरी द्वारका बभव, बहुत सुंदर लग रही थी। कैसे? उत्तभितेन्द्र केतु भी, इंद्र केतु जहां तहां लगे थे। इंद्र केतु एक ध्वज विशेष होता है, झंडा विशेष, उसको इंद्र केतु कहते हैं, और वह झंडा बहुत चौड़ा और बहुत लंबा खंभे पर गाड़ा गया था जगह जगह, उसको उत्तभित कहते हैं, ऊंचे स्तंभ में वो झंडे सब लगाए गए थे, जमीन पर से ही नहीं, झंडा टांगने के लिए ही वे सब स्थान बनाए गए थे, और उसको, उस विशेष झंडा को, ध्वज को इंद्र केतु कहते हैं। वह सौभाग्य का, विजय का, सुख का प्रतीक होता है। तो द्वारका में सर्वत्र झंडे लगाए गए थे, वे लहरा रहे थे। पहली शोभा वर्णन कर रहे हैं, विचित्र माल्यम बर रत्न तोरण, विचित्र माल्य और अद्भुत फूल से सजाई गई थी द्वारका सब जगह। माला जिससे बनता है उसको माल्य कहते हैं, माल्य का अर्थ है पुष्प, जिसे माला बनाई जाती है। माल्य, अंबर, रत्न तोरण, विविध वस्त्र जहां तहां लगाए गए थे, और रत्न के तोरण, अनेक रत्नों से सजाई गई थी नगरी। प्रति द्वारी उपकृत मंगल, प्रत्येक द्वार पर मंगल चिन्ह बनाए गए थे, जैसे घरों, घर के बाहर बनाते हैं बहुत से चित्रकारी या जव अंकुश आदि छिड़कते हैं, फूल को बिखेरते हैं, कुछ लिखते हैं स्वागतम वेलकम लिखते हैं, विवाह के अवसर पर तो जरूर लिखते हैं, और हमने देखा है गांव में, यहां तो स्पष्ट हाथी घूम रहे हैं, लेकिन गांव में अगर हाथी नहीं भी आया है तो द्वार पर हाथी बना देते हैं मंगल के लिए, ये केला ला करके गाड़ते हैं, सजाते हैं, तो द्वारका का तो कहना ही नहीं, वहां पर किस तरह से मंगल द्रव्य सजाए गए हैं प्रत्येक द्वारी, प्रति द्वारी, प्रत्येक द्वार पर, क्योंकि प्रत्येक घर में विवाह हो रहा है, तो प्रति द्वारी उपकृत मंगल है, अपूर्ण कुंभा गुरु धूप दीप कई, और क्या क्या सामान रखे गए हैं, जल से भरे हुए घड़े रखे गए हैं द्वार के बाहर, और अगुरु जलाए गए हैं, धूप और दीपक से सजाए गए हैं सारे घर, इस तरह से द्वारकापुरी बहुत सुंदर लग रही थी। सिक्त मार्गा मदचित भी राहुत पृष्ठभू भुजान, और पृष्ठभू भुजान जो भगवान श्री कृष्ण के या यजवंशियों के प्रिय राजा लोग थे इस पृथ्वी पर, उनको विधिवत निमंत्रण भेजा गया था। ऐसा नहीं कि आए भगवान बस दूसरे दिन ही विवाह हो गया, बहुत बड़ी तैयारी करके हुई। साधारण आदमी भी कितना अच्छा निमंत्रण छापता है अपने पुत्र या पुत्री के विवाह में, वो तो भगवान का विवाह है तो कितना अच्छा निमंत्रण छापा गया होगा, और उस निमंत्रण को तो साक्षात नारद जी बांट रहे होंगे ले जाकर। तो उसमें सारे राजा आए थे, वे जो कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के जो प्रिय हैं या कृष्ण को जो अपने प्रिय मानते हैं, वे राजा लोग आए थे, भूभुजा पृथ्वी को भोगने वाले हैं राजा। तो राजा आए थे इसका अर्थ है कि बहुत लोग आए थे, राजा जहां चलता है तो उसके वरिष्ठ नागरिक चलते हैं, सचिव चलते हैं, सेवक चलते हैं, रानियां आती हैं, तो सभी लोग आए थे जहां तहां, उनके नाम आगे आ रहे हैं कौन कौन आए थे। तो उन राजाओं की हाथियां जो चल रही थी नगर में, हाथियों पर लोग चढ़े थे, तो हाथियों के चलने से, हाथियों के गाल से मद चू रहा था, उससे पूरा सिक्त हो गई थी द्वारका नगरी, सब जगह सुगंध फैली, हाथी के मद में बहुत सुगंध होता, भौंरे साथ साथ चलते, कभी कभी हाथी के कान का झटका खा करके भी भौंरे नहीं छोड़ते हैं, इतनी सुगंध होती है। तो उस सुगंधित जल से द्वारका पूरी सिक्त मार्ग, मार्ग सब सिक्त थे, और इससे यह सिद्ध होता है कि यह विवाह गर्मी में हो रहा है, इसीलिए सिक्त कहकर सुखदेव गोस्वामी उसकी शोभा का वर्णन कर रहे, नहीं जनवरी फरवरी में सिक्त हो जाए तब तो और ठंडा तो गर्मी के दिन में विवाह हो रहा है, प्रायः होता भी है विवाह गर्मी में। सिक्त मार्ग जितने भी मार्ग थे, खास करके बड़े बड़े मार्ग, वे उससे सिक्त हुए थे, और बाकी तो चंदन जल से सिक्त किए गए थे, हाथियों के मद से सिक्त मार्ग। गजय द्वासु परामृष्ट रंभा पूगोपशोभिता, और द्वार द्वार पर केले लगाए गए थे, केले के खंभे रोपे गए थे, और पूग सुपारी फल से युक्त पौधे उसके सजाए गए थे। और हाथी जब चलते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हाथी को ही दे दिया जाता था केला, वो सूंड में ऐसे केला को टांग करके चल रहा था, यह परामृष्ट कर श्रीधर स्वामी जी ये कर रहे हैं, या पूग फल सुपारी का पौधा सूंड में लपेट करके दिखा रहा है, अथवा जगह जगह द्वार द्वार पर जो सजाए गए थे उनको हाथी अपने सूंड से ऐसे छूते थे जहां तक परामृष्ट, यहाँ कह रहे परामृष्ट रंभा पूगो पुशोभिता, हाथी उनको छू रहे थे या टांगे हुए थे, रंभा केला के खंभे और पूग सुपारी के पौधे, फल युक्त सुपारी के पौधे, बहुत मंगलमय माना जाता है। इस तरह से बहुत सुंदर लग रही थी द्वारका। कौन कौन राजा लोग आए थे देश के अनुसार नाम बता रहे हैं। कुरु सिंजय कैकेय विदर्भ जदुकुंतय मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावतां, एक तो ये कह रहे हैं कि द्वारकापुरी खूब सजाई गई थी और विवाह में इस वस्तु की जरूरत है, ये लाना है, उधर ये खिलाना है, उनको ये देना, उनको ये देना, तो परिधावता सब इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई सवारी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। जहां उत्सव होता है तो वहां पर वेग बढ़ जाता है, आदमी जाता है ये करना वो करना वो करना, और जहां निरुत्सव होता है, उत्सव नहीं होता है, तो वहां आदमी आलसी रहता है, पड़े रहता है। द्वारकापुरी में आनंद छाया है, इसलिए परिधावता, सब लोग दौड़ रहे आनंद के कारण। तो कुछ लोग तो इसलिए दौड़ रहे हैं, वहां क्या उत्सव हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो देखना है, कृष्ण के लिए ये लाना है, रुक्मिणी जी के लिए लाना है, तो अभी कोई चीज की जरूरत पड़ गई, बाजार से दौड़ो, ये लाओ। विवाह में बहुत चीज की जरूरत पड़ती रहती है और पहले से धारणा नहीं रहती है कि इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो दौड़ना स्वाभाविक होता है। जो सभी प्रेम से दौड़ रहे थे, बहुत उत्कंठा के साथ, लालसा के साथ, और राजा लोग आए थे बारात में, तो कौन कौन थे? सबसे पहले कह रहे कुरु, कुरुवंशी, हस्तिनापुर से भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज आदि सब आए थे, ये कुरुवंशी लोग आए थे। तो कुरु शब्द कह करके वहां के सभी लोगों को सूचित कर दिया गया, पांडव और धृतराष्ट्र महाराज, उनका दल और भीष्म पितामह वगैरह सब आए थे। ये लोग तो बिल्कुल निकट के संबंधी थे, भगवान की बुआ का विवाह हुआ था वहां, पांडु महाराज खास फूफा थे, तो बहुत निकट का संबंध था। तो ये सब आए थे, तो अपने पूरे साज बाज के साथ और कृष्ण को प्रचुर धन देने के लिए भी आए थे। ये बहुत धनी हैं हस्तिनापुर वाले, उनके अधीन भगवान रहते थे। तो कुल सिंजय से तत्पर से द्रौपदी महाराज द्रुपद का परिवार, द्रुपद बहुत प्रेम करते थे भगवान कृष्ण से और द्रौपदी के साथ संबंध था उधर, तो इसलिए ये सब आए। सृंजय वंशी, कैके देश में श्रुत कीर्ति भगवान की बुआ थी या क्या थी, उस कैके देश में, तो वहां से भगवान के सब फूफा वगैरह सब लोग आए थे कैके देश से, विदर्भ से। तो खास महाराज भीष्मक जी कितने सम्मान लेकर आए होंगे अपनी बेटी के विवाह में, कितनी खुशी के साथ, इसको कौन बता सकता है। चारों भाई आए होंगे, आवाज से रुक्मी नहीं आया। वो तो भोजकट नगर में चिंता में डूबा हुआ था, वो तो घर बनवा रहा होगा नया, कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में, राजभवन। तो विदर्भ देश से आए थे सब महाराज भीष्मक के साथ, और सब जदु से तो तात्पर्य है जदुवंश में, और जो भी इधर उधर थे बसे हुए वे सब आए। और कुंतय महाराज कुंती भोज, जहां पर बचपन में कुंती पली थी, वे सब लोग आए, राजा लोग। और मिथो मुनिदिरे एक दूसरे से मिल करके बहुत प्रसन्न हुए, एक तो भगवान के विवाह का महोत्सव और दूसरे बहुत काल के बाद भेंट हुई थी, एक दूसरे को आनंद में देख करके सब सराबोर हो गए आनंद में। अपने बंधुओं को देख करके जो आनंद होता है, उस आनंद की तुलना कहीं नहीं है। तो ये परस्पर सब संबंधी थे कृष्ण के आधार पर, कृष्ण मूल है और उनके कारण सब संबंधी थे। तो द्वारका के उस विवाहोत्सव में सब बहुत आनंद में थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी बार बार ये शब्द कहते हैं, मुमुदिरे मुमोदा, बहुत आनंद में थे, बहुत आनंद में थे। और चर्चा क्या होती थी जहां तहां, राजाओं के समाज में या रानियों के समाज में, राजकन्याओं के समाज में, सब जगह चर्चा क्या होती थी? रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा गीयमानम ततस्तत राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मितः राजा और राजा की कन्याएं और राजाओं की स्त्रियां अथवा राजा के सचिव दास सब क्या चर्चा कर रहे थे? रुक्मिण्या हरणम ततस्ततः गीयमानम श्रुत्वा, सब जगह यही गाया जा रहा था। केवल द्वारका में नहीं, पूरे भूमंडल में गाया जा रहा था। विशेष करके उस विवाह के अवसर पर कृष्ण लीला गाई जा रही थी, और तत्काल ही पद में बना लेने वाले, कविता बनाने वाले बड़े बड़े कवि, ये गंधर्व भी मनुष्य के रूप में आए होंगे, और ये लोग रुक्मिणी मंगल की कथा गा रहे हैं, खास करके रुक्मिणी हरण की कथा, कैसे रुक्मिणी का हरण किया भगवान ने, यही बात गाई जा रही थी। इसको सुन सुन करके राजा और राजाओं की कन्याएं बिल्कुल विस्मित हो जाती थी। श्री कृष्ण के प्रति विस्मित का अर्थ है कृष्ण के प्रति गौरव बढ़ जाता था, गौरव भाव बढ़ जाता था। श्री कृष्ण निश्चित ही भगवान हैं, प्रभु हैं। इतने बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करके रुक्मिणी को लाए तो बहुत विस्मित होते थे। द्वारकायाम भूद राजन महामोदह पुरौकशाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, पुनः संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, द्वारकायाम महामोदह अभूत, द्वारका में महाआनंद छा गया, महामोदह महामोद हुआ पुरौकशाम, आने वाले लोगों के आनंद का तो वर्णन किए ही, द्वारका वासियों के विषय में कह रहे महामोद छाया। कैसे खास करके कृष्ण को रुक्मिणी के साथ देख करके जो सुख हुआ उसके विषय में कहते हैं कि महामोद छा गया द्वारका के लोगों को। भगवान को अपनी प्रियतमा रुक्मिणी जी के साथ देख करके बहुत बड़ा आनंद छा गया। कृष्ण स्वयं ही श्रीपति है, सौंदर्य लक्ष्मी के पति हैं, या लक्ष्मी पति हैं, और वे ऐसे बिना विवाह के थे तो भी सुंदर लगते हैं, लेकिन अब वे बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत आनंद छा गया घर घर में। सभी तो कृष्ण को यही मानते थे कि हमारा पुत्र है और रुक्मिणी हमारी पुत्र वधु है, इसलिए सब आनंद में भर गए। तो द्वारका नगर के लोगों के लिए महामोद हुआ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंधे रुक्मिणी उद्वाहोत्सवे चतुष्पंच सप्तम अध्याय। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी के विवाह में यह 54वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण।